अध्याय 28 अनुग्रह का पुरस्कार। यह अध्याय मत्ती 19 आयत 16 से 30, 20 आयत 1 से 16, मरकुस 10 आयत 17 से 31, लूका 18 आयत 18 से 30 पर आधारित है। ईश्वर की स्वतंत्र कशपा का सत्य यहूदियों द्वारा लगभग खो दिया था। रब्बियों ने सिखाया कि ईश्वर का एहसान जरूर हासिल करना चाहिए। धर्मी लोगों का प्रतिफल उन्हें उनके कामों से प्राप्त होने की आशा थी। इस प्रकार उनकी आराधना एक उत्साह भावात्मक भावना द्वारा प्रेरित थी। इस भावना से भी मसीह के शिष्य पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे और उद्धारकर्ता ने उन्हें अपनी त्रुटि दिखाने का हर अवसर मांगा। मजदूरों के दृष्टांत देने से ठीक पहले एक घटना घटी जिसने उनके लिए सही सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का रास्ता खोल दिया। जब वह रास्ते से जा रहा था, एक युवा शासक उसके पास आया और घुटने टेक कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। अच्छा मास्टर, उन्होंने कहा, मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो? शासक ने मसीह को केवल एक सम्मानित रब्बी के रूप में संबोधित किया था, न कि उसे परमेश्वर के पुत्र समझा। उद्धारकर्ता ने कहा, तुम मुझे अच्छा क्यों बोल रहे हो? यहां कोई भी अच्छा नहीं है, केवल ईश्वर है। यदि आप मुझे इस तरह से पहचानते हैं तो आपको मुझे उनके बेटे और प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करना होगा, यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज्ञाओं को मानो। ईश्वर का चरित्र उनके नियम में व्यक्त किया गया है और आपके लिए ईश्वर के साथ सद्भाव में होने के लिए उनके कानून के सिद्धांतों को आपके हर कार्य का वसंत होना चाहिए। मनुष्य व्यवस्था के दावों में काम नहीं करता है। अनसदिग्ध भाषा में वह आज्ञाकारिता को शाश्वत जीवन की स्थिति के रूप में प्रस्तुत करता है, वही स्थिति जो आदम के गिरने से पहले आवश्यक थी। ईश्वर से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वर्ग में मनुष्य की अपेक्षा किसी भी आत्मा से कम नहीं, पूर्ण आज्ञाकारिता, निष्कलंक धार्मिकता, अनुग्रह की वाचा के तहत आवश्यकता, अदन में व्यापक आवश्यकता के रूप में है। ईश्वर की व्यवस्था के साथ सद्भाव पवित्र, न्यायपूर्ण और अच्छा है। शब्दों में, आज्ञाओं का पालन करो, युवक ने उत्तर दिया। कौन सा उनका मानना या कि कुछ औपचारिक उपदेश का मतलब था, लेकिन मसीह सीने पर दिए गए आज्ञाओं के विषय में बोल रहा था। उन्होंने 10 आज्ञाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने 10 आज्ञा की दूसरी तालिका से कई आज्ञाओं का उल्लेख किया, फिर उन सभी उपदेश में कहा, तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ये सारी आज्ञाएं मैंने अपने युवावस्था से ही मान रखी हैं। मुझे में अभी तक क्या कमी है? व्यवस्था की उनकी अवधारण बाहरी और सतही थी। मानव मानक के अनुसार उन्होंने एक निर्दोष चरित्र के संरक्षित किया था। एक हद तक उसका बाहरी जीवन अपराध बोध से मुक्त हो चुका था। उसने वास्तव में सोचा था कि उसकी आज्ञाकारिता बिना किसी दोष के थी। फिर भी उसे एक गुप्त भय था कि आत्मा और ईश्वर के बीच सब ठीक नहीं है। इसने सवाल पूछा, मुझे में अभी तक क्या कमी है? अगर तुम परिपूर्ण हो, मसीह ने कहा, जो तुम्हारे पास है सब बेचकर गरीबों में बांटकर मेरे पीछे हो लो। लेकिन जब युवक ने कहते सुना तो वो चला गया दुखी होकर, क्योंकि उसके पास बहुत अधिक धन था। स्वयं का अपराधी व्यवस्था का अपराधी है। यह युवक यीशु को प्रकट करना चाह रहा था और उसने उसे एक परीक्षा दी जो उसके चरित्र में आएगी। युवक ने आगे कोई आत्मज्ञान नहीं चाहा। उसने आत्मा में ज्ञान नहीं चाहा। उसने आत्मा में एक मूर्ति को घोषित किया था। दुनिया उसकी ईश्वर थी। उसने आज्ञाओं को निभाने के लिए हां जरूर कहा, लेकिन वो उसे सिद्धांत से निराश था जो उन सभी की आत्मा और जीवन है। उसे परमेश्वर या मनुष्य के लिए सच्चा प्यार नहीं था। ये सब कुछ चाहता था कि वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने योग्य है। आत्मा और सांसारिक लाभ के अपने प्यार में वह स्वर्ग के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य से बाहर था। जब वो युवा शासक यीशु के पास आया तो उसकी ईमानदारी ने उद्धारकर्ता का दिल जीत लिया। उसे देखकर उसके मन में उसके लिए प्यार आया। इस युवक में उसने देखा कि वो धर्म के प्रचारक के रूप में सेवा कर सकता है। वो इस प्रतिभाशाली और महान युवा को आसानी से प्राप्त कर सकता था, जिस प्रकार उसने गरीब मछुआरों को प्राप्त किया था। यदि युवक ने आत्माओं को बचाने के काम के लिए अपनी क्षमता समर्पित की, तो वो मसीह के लिए एक मेहनती और सफल मजदूर बन सकता था, लेकिन उसे पहले शिष्यत की शर्त स्वीकार करनी चाहिए। उसे खुद को ईश्वर के लिए अनारक्षित रूप से देना चाहिए। मुक्तिदाता के आह्वान पर यहूना, पतरस, मत्ती और उनके साथियों ने सब कुछ छोड़ दिया और उठकर उनके पीछे चल दिए। लूका 5:28। युवा शासक के लिए वही अभिषेक आवश्यक था। इससे मसीह ने इससे बड़ा बलिदान नहीं मांगा जो उसका स्वयं का था। वो धनी था, लेकिन स्वयं के लिए वो गरीब हो गया, ताकि तुम उसका अनुसरण करने के लिए हो जहां मसीह ने मार्ग का नेतृत्व किया था। मसीह ने बहुत देर तक उस व्यक्ति और उसकी आत्मा को देखा। वो उसे पुरुषों को आशीर्वाद देने के दूत के रूप में आगे भेजने की लालसा रखता था, उस स्थान पर जो उसने उसे आत्मसमर्पण के लिए बुलाया था। मसीह ने उसे खुद के साथ सहचर्य के विशेषाधिकार की पेशकश को, मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा। इस विशेषाधिकार पतरस, याकूब और यहून्ना द्वारा खुशी के रूप में गिना गया था। युवागण स्वयं प्रशंसा के साथ मसीह की ओर देखते थे। उसका दिल उद्धारकर्ता की ओर खिंच गया, लेकिन वो आत्म बलिदान के उद्धारकर्ता के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने धन को यीशु के सामने चुना। वो शाश्वत जीवन चाहता था, लेकिन उस आत्मा को प्राप्त नहीं करेगा जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जो अकेला जीवन है, और दुखी मन से वो मसीह से दूर हो गया। जब वो युवक चला गया, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, वे कितने मुश्किल से धनवान होंगे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इन शब्दों ने शिष्यों को चकित कर दिया। उन्हें स्वर्ग के धन के विषय में सिखाया गया था। सांसारिक शक्ति और धन वे खुद को मसीह के राज्य में प्राप्त करने की आशा करते थे। यदि अमीर राज्य में प्रवेश करने में विफल रहे, तो बाकी पुरुषों के लिए क्या आशा हो सकती है? यीशु ने फिर से उत्तर दिया और उनसे कहा, बच्चों, उनके लिए ये कितना कठिन है कि परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने के लिए धनवानों के लिए ऊंट के लिए आसान है सुई के नाके से निकलना, लेकिन धर्मी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये देखकर वो अचंभित हुए। अब उन्हें एहसास हुआ कि वे स्वयं गंभीर चेतावनी में शामिल थे। उद्धारकर्ता के शब्दों के प्रकाश, सत्ता और धन के लिए उनकी अपनी गुप्त लालसा प्रकट हुई। खुद के लिए गलतफहमी के साथ उन्होंने कहा, फिर किसे बचाया जा सकता है? यीशु ने उन्हें देखकर कहा, क्योंकि ये पुरुषों के साथ असंभव है, लेकिन ईश्वर के साथ नहीं। ईश्वर के लिए सभी चीजें संभव है। एक आदमी जैसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका धन उसे प्रकाश संतों की विरासत का कोई अधिकार नहीं देता है। ये केवल मसीह की असीम कृपा के माध्यम से है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के शहर में प्रवेश पा सकता है। गरीबों से कम अमीर के लिए पवित्र आत्मा के वचन नहीं बोले जाते हैं, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। 1 कुरिन्थियों 6:19-20। जब पुरुष ये मानते हैं, तो उनकी संपत्ति को ईश्वर के रूप में उपयोग किए जाने वाले विश्वास के रूप में रखा जाएगा। खोए हुए की बचत के लिए और आराम के लिए पीड़ित और गरीब, उस आदमी के साथ जो असंभव है, क्योंकि वो दिल से अपने सांसारिक खजाने को जकड़ लेता है, वो आत्मा जो धन दौलत की सेवा में भी बंधी है, वो मानव की जरूरत के रोने के लिए बहरा है, लेकिन ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव है। मसीह का प्यार स्वार्थी दिल पिघल जाएगा और वश में हो जाएगा। अमीर आदमी का नेतृत्व किया जाएगा, जैसे कि शाऊल फरीसी था, ये कहने के लिए, मुझे क्या चीजें हासिल हुईं, मैंने मसीह के लिए हानि उठाई। और निसंदेह सभी चीजें को यीशु मसीह के ज्ञान के ओर हानि समझता हूं। मसीह के ज्ञान के आगे सभी चीजों को हानि समझता हूं। फिलिप्पियों 3 आयत 8। तब वो किसी भी चीज को अपना नहीं समझेंगे, वो उसे मसीह के सेवक के तौर उसके अनुग्रह के द्वारा खुशी प्राप्त करेंगे और उसके लिए उसके सेवक तौर पर रहेंगे।
पत्रस उद्धारकर्ता के शब्दों में गढ़े हुए गुप्त दोष से रैली करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने और उसके भाइयों ने मसीह के लिए त्याग किया था, उस पर संतोष किया। देखो, उसने कहा, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। युवा शासक को सशर्त वचन याद करते हुए, स्वर्ग में तेरे लिए खजाना है। अब उसने पूछा कि उसे और उसके साथियों को उनके बलिदानों के लिए पुरस्कार के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए। उद्धारकर्ता के जवाब ने उन गैलिलियन मछुआरों के दिलों को रोमांचित कर दिया। इसने उन सम्मानों का चित्रण किया जो उनके उच्चतम सपनों को पूरा करते हैं। वास्तव में मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, इस उत्थान में जब मनुष्य का पुत्र अपने गौरव के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम 12 सिंहासन पर बैठोगे, इज़राइल की 12 जनजातियों का न्याय करते हुए। और उन्होंने कहा, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने अपना घर, भाई या बहन या पिता या माता या पत्नी या बच्चे या भूमि मेरी खातिर और सुसमाचार के लिए छोड़े, तो वो 100 गुना प्राप्त करेगा इस समय, चाहे वो घर, भाई, बहने, माताएं और बच्चे और भूमि सताहट के साथ और संसार में अनंत जीवन पाने के लिए। लेकिन पत्रस का सवाल है, हमारे पास क्या होना चाहिए? ने एक रेखा आत्मा को प्रकट किया है जो मसीह के लिए दूत होने के लिए अयोग्य रूप से गलत तरीके से शिष्यों को डुबो देती है। इसके लिए एक भाड़े की भावना थी। जब वे यीशु के प्रेम से आकर्षित हो गए थे, तब वे शिष्य पूर्ण रूप से फरीसीवाद से मुक्त नहीं थे। उन्होंने अभी भी अपने श्रम के अनुपात में एक इनाम के विषय के विचार के साथ काम किया। उन्होंने आत्मोत्थान और आत्मशालीनता की भावना को घोषित किया और तुलनाओं को खुद के बीच बनाया। जब उनमें से कोई भी किसी विशेष में विफल रहा, तो दूसरों ने श्रेष्ठमा की भावनाएं व्यक्त की। ऐसा न हो कि चेलों को सुसमाचार के नियमों की दृष्टि खोनी पड़े। मसीह से संबंधित एक दृष्टांत है जिसमें परमेश्वर अपने सेवकों के साथ व्यवहार करता है और जिस भावना से वो उनके लिए श्रम करना चाहता है। स्वर्ग का राज्य, उन्होंने कहा, उस आदमी के समान है जो एक गृहस्थ है जो सुबह सुबह अपनी दाख की बारी में मजदूरों को नियुक्त करने के लिए निकला था। वो बाजार के स्थानों में प्रतीक्षा करने के लिए रोजगार करने वाले पुरुषों के लिए प्रथा थी और इसके लिए लोग नौकरों को बाजार में खोजने जाते थे। काम करने वालों को संलग्न करने के लिए अलग अलग घंटों में बाहर जाने का प्रतिनिधित्व करने योग्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो जल्द से जल्द घर पर काम पर रखा जाता है। एक निर्दिष्ट राशि के लिए काम करने के लिए सहमत होते हैं। जिन लोगों को काम पर रखा जाता है, वे बाद में गृहस्वामी के विवेक को छोड़ देते हैं। जब शाम हुई, दाख के बारी ईश्वर ने भंडारी को बनाया कि मजदूरों को बुलाओ और उन्हें उनकी मजदूरी दे दो, जो कि पहलू से लेकर शाम तक। और जब वे आए, तो जो 11वें समय के आए, उन्हें 1 पैसा पर रखा गया था। लेकिन जो पहले आया, तो उनका मानना था कि उन्हें अधिक प्राप्त करना चाहिए था। इसी प्रकार उन्होंने हर आदमी को 1 पैसा दिया। घर के मालिक के साथ परमेश्वर दाख की बारी में मजदूरों के साथ व्यवहार करना मानव परिवार के साथ परमेश्वर के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। ये पुरुषों के बीच प्रचलित रीति रिवाजों के विपरीत है। सांसारिक व्यवसाय में कार्य की पूर्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। मजदूर को उम्मीद है कि उसे केवल उतना ही भुगतान किया जाएगा जो वो कमाता है। लेकिन दृष्टांत में मसीह अपने राज्य के सिद्धांतों का चित्रण कर रहा था। एक राज्य इस दुनिया का नहीं, वो किसी भी मानव मानक द्वारा नियंत्रित नहीं है। प्रभु कहते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग है, क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी ऊंचे है, वैसे ही तुम्हारे मार्ग और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अधिक हैं। यशाया 55 आयत 8-9। दृष्टांत में पहले मजदूर एक निर्धारित राशि के लिए काम करने के लिए सहमत हुए और उन्हें निर्दिष्ट राशि प्राप्त हुई। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाद में काम पर रखने वालों ने मास्टर के वायदे पर विश्वास किया, जो भी सही होगा वो आपको प्राप्त होगा। उन्होंने मजदूरी के संबंध में कोई प्रश्न न पूछकर उन पर अपना विश्वास दिखाया। ये ईश्वर के लिए सभी सच्चे सेवा भाव की भावना है। इस भावना की कमी के माध्यम से कोई जो पहले दिखाई देते हैं वह अंत में हो जाएगा, जबकि लोभ इसके पास है, हालांकि पिछले खाते में पहले हो जाएगा। ऐसे कई लोगों ने जिन्होंने खुद को मसीह के लिए दिया है, फिर भी जो अपनी सेवा में कोई बड़ा काम करने या महान बलिदान करने का कोई अवसर नहीं देखते हैं, ये इस विचार में मिल सकते हैं कि वह जरूरी नहीं कि शहीद का आत्म समर्पण हो, जो कि ईश्वर के लिए सबसे स्वीकार्य हो। ये मिशनरी नहीं हो सकता है जिसने दैनिक खतरे का सामना किया है और मृत्यु स्वर्ग के रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। मसीही जो अपने निजी जीवन में ऐसे है, दैनिकी आत्मसर्पण में, उद्देश्य की ईमानदारी में और विचार की शुद्धता में, उत्तेजना के तहत नम्रता में, विश्वास और पवित्रता में, निष्ठा में, जो कम से कम घर में एक है, जीवन मसीह के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध मिशनरी या शहीद से भी अधिक कीमती हो सकता है। ओह, कितने अलग अलग मानक है जिनके द्वारा ईश्वर और पुरुष चरित्र को मापते हैं। ईश्वर ऐसे कई प्रलोभनों को देखता है जिनके खिलाफ दुनिया और यहां तक कि दोस्तों के दिल में, घर में होने वाले प्रलोभनों का कभी पता नहीं चलता है। वह अपनी कमजोरी को देखते हुए आत्मा की विनम्रता को देखता है। उन्होंने आत्म लड़ाई के साथ कठिन लड़ाई के घंटों का उल्लेख किया है जिसने जीत हासिल की। ये सब ईश्वर और स्वर्गदूत जानते हैं। उनके लिए स्मरण की एक पुस्तक उनके सामने लिखी गई है, जो प्रभु डरते हैं और उनके नाम पर सोचते हैं। न हमारी सीख में, न हमारी स्थिति में, न हमारी संख्या में या सौंपी गई प्रतिभाओं में, न कि मनुष्य की इच्छा में सफलता का रहस्य ढूंढना है। अपनी अक्षमता को महसूस करते हुए हम मसीह का चिंतन कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो पूरी ताकत है सभी विचार के बारे में सोचा है। इच्छुक और आज्ञाकारी जीत के बाद जीत हासिल करेंगे, और फिर भी हमारी सेवा में कभी या हमारे काम को विनम्र करना, अगर साधारण विश्वास में हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम इनाम से निराश नहीं होंगे। जो सबसे बड़ा बुद्धिमान भी नहीं कमा सकता है, वह सबसे कमजोर और विनम्र हो सकता है। स्वर्ग का सुनहरा द्वार आत्म उत्थान के लिए नहीं खुलता है, यह आत्मा में गर्व करने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन चिरस्थायी पोर्टल छोटे बच्चे के थरथराने वाले स्पर्श के लिए व्यापक होंगे। धन्य है उन लोगों पर अनुग्रह की पूर्णावपत्ति जो विश्वास और प्रेम की सादगी में ईश्वर के लिए सदा है। जब गह स्वामी आखिरी घंटे में बाजार गया, उसने बेरोजगार को देखा और कहा, तुम यहां पूरे दिन बेकार क्यों खड़े हो? जवाब था, क्योंकि किसी आदमी में हमें काम पर नहीं रखा। बाद में बुलाया जाने वालों में से कोई भी सुबह में नहीं था, उन्होंने बुलाहट से इनकार नहीं किया था। जो पश्चाताप करते हैं वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन यह दया के लिए पहली बुलाहट के साथ सुरक्षित नहीं है। जब दाख की बारी में मजदूरों को हर मजदूर को एक मुद्रा मिली, जो लोग पहले आए वो नाराज हो गए और उन्होंने 12 घंटे काम नहीं किया। उन्होंने तर्क दिया, क्या यह सही नहीं था कि उन्हें उन लोगों से अधिक प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने दिन के समय, सुबह जब ठंडा रहता है तब उन्होंने 1 घंटे काम किया है, लेकिन बाद में जो उन्होंने केवल 1 घंटे काम, लेकिन तूने उन्हें हमारे बराबर मजदूरी दी जिन्होंने दिन के बोझ और गर्मी के सहन किया। मित्र गहस्वामी ने उनमें से एक उत्तर दिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्या तुम मेरे साथ एक मुद्रा के लिए सहमत हुए? जो तुम्हारा है वो लो और अपने रास्ते जाऊं। जैसे मैंने तुम्हें दिया आखिरी वाले को भी उतना दूंगा। क्या मेरे लिए ये उचित नहीं कि मैं अपना काम करूं? क्या मेरी आंख बुरी है क्योंकि मैं अच्छा हूं? जो अंतिम है वो पहले जाएंगे और जो पहला है वो अंतिम हो जाएगा। बहुतों को बुलाया जाएगा लेकिन थोड़े को चुना जाएगा। दृष्टांत के पहले मजदूर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी सेवाओं के कारण दूसरों के ऊपर वरीयता का दावा करते हैं, जो आत्मसंतुष्टि की भावना में अपना काम करते हैं और इसे आत्मनिषेध और बलिदान नहीं करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। वे कठिनाई, निजी काम और मुकदमे के सहन करने में सबसे आगे रहे हैं, इसलिए वे खुद का एक बड़े इनाम के हकदार समझते हैं। उन्हें लगता है मसीह के सेवक होने के विशेषाधिकार की तुलना में अधिक इनाम। उनके विचार में उनके मजदूरों और बलिदानों ने उन्हें के ऊपर सम्मान प्राप्त करने का हक दिया है, और क्योंकि ये दावा मान्यता प्राप्त नहीं है, वे नाराज है। क्या वे अपने काम को एक प्रेमपूर्ण विश्वास की भावना के साथ लाते हैं? वे पहले करते रहेंगे, लेकिन उनकी विवादास्पद शिकायत करने की प्रवृत्ति मसीह के समान नहीं है और उन्हें अविश्वसनीय साबित करता है। ये आत्म उन्नति के लिए उनकी इच्छा है। ईश्वर के प्रति उनके अविश्वास और उनकी ईर्ष्या उनके भाई के प्रति गंभीर भावना को प्रकट करता है। ईश्वर की भलाई और उदारता उनके लिए केवल बड़बड़ाने का एक अवसर है। इस प्रकार वे दिखाते हैं कि उनकी आत्माओं और ईश्वर के बीच कोई संबंध नहीं है। वे मास्टर सेवक की खुशी नहीं जानते हैं। इस संकीर्ण आत्म देखभाल की भावना की तुलना में ईश्वर के लिए अधिक आक्रामक कुछ भी नहीं है। वह इन विशेषताओं को प्रकट करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता है। वे अपनी आत्मा के कार्य के प्रति असंवेदनशील है। यहूदियों को पहले ईश्वर की दाख की बारी में बुलाया गया था और इस वजह से वे गर्व और आत्मधर्मी थे। उनकी सेवा के लंबे वर्षों के लिए उन्हें दशरों की तुलना में बड़ा इनाम प्राप्त करने का हकदार माना गया। अन्य लोगों की तुलना में उनके लिए अधिक अंतर्गता नहीं थी, क्योंकि अन्य जातियों को परमेश्वर की बातों में स्वयं के साथ समान विशेषाधिकार में भर्ती होना था। मसीह ने उन चेलों को चेतावनी दी जिन्हें पहले उनका अनुसरण करने के लिए कलीसियों का अभिशाप, आत्मधार्मिकता को भावना होगी। पुरुष सोचते होंगे कि वे स्वर्ग के राज्य में एक जगह कमाने के दिशा में कुछ कर सकते हैं। वे कल्पना करेंगे कि जब उन्होंने कुछ उन्नति की थी तो प्रभु उनकी सहायता के लिए आएंगे। इस प्रकार यीशु की आत्म और छोटी की बहुतायत हो जाएगी। जिन लोगों ने थोड़ी सी उन्नति की वे बहुत खुश होंगे और खुद को दूसरों से बेहतर समझेंगे। वे चापलूसी के लिए उत्सुक होंगे। ईर्ष्या इस खतरे के खिलाफ मसीह अपने बच्चों की रक्षा करना चाहता है। अपने आप में योग्यताओं के सभी घमंड जगह से बाहर है। बुद्धिमान मनुष्य को अपनी बुद्धि में महिमा मत दो, न तो अपने पराक्रम में। पराक्रमी का गुणगान करो, न धनवान व्यक्ति को अपने धन का वैभव दो, बल्कि उसे इस गौरव को, उसकी महिमा को, जो वह मुझे समझता है और मुझे जानता है कि मैं हूं। प्रभु जो पृथ्वी में प्रेम, दया, न्याय और धार्मिकता का प्रयोग करते हैं, इन बातों में मैं प्रभु को प्रसन्न करता है। यिर्मयाह 9 आयत 23-24। इनाम काम का नहीं है। ऐसा न हो कि किसी कोई भी व्यक्ति घमंड करे, लेकिन ये अनुग्रह के सभी है। फिर हम क्या कहेंगे कि अब्राहम हमारे पिता, जो मांस से संबंधित है, के रूप में पाया गया है? क्योंकि अगर अब्राहम के कामों को न्यायोचित ठहराया जाता है तो वह महिमा के लिए है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि शास्त्र के अनुसार अब्राहम ने ईश्वर पर विश्वास किया। ये उसके लिए उसका विश्वास है कि अधर्म का न्याय करता है, उसका विश्वास धार्मिकता के लिए गिना जाता है। रोमियो 4 आयत 1-5। इसलिए एक के लिए दूसरे पर गौरव करने या दूसरे के खिलाफ कुढ़ने का कोई अवसर नहीं है। किसी का भी दूसरे के ऊपर निजीकरण नहीं किया जाता है और न ही कोई पुरस्कार के अधिकार के रूप में दावा कर सकता है। पहले और आखिरी की महान शाश्वत इनाम में हिस्सेदार होना चाहिए और पहले को अंतिम रूप से खुशी से स्वागत करना चाहिए। वह जो दूसरों को इनाम देता है वह भूल जाता है वह खुद अनुग्रह से बचा है। मजदूरों के दृष्टांत सभी ईर्ष्या और संदेह को डांटते हैं। सच्चाई में प्रेम आनंदित होता है और कोई भी ईर्ष्यालु मसीह और उसके स्वयं के अपूर्ण चरित्र की तुलना नहीं करता है।
यह दृष्टांत सभी मजदूरों के लिए एक चेतावनी है।
हालांकि उनकी सेवा, हालांकि उनके मजदूरों की प्रचुर मात्रा में, कि उनके भाई के लिए प्यार के बिना, ईश्वर के सामने विनम्रता बिना, वे कुछ भी नहीं। स्वयं के प्रवेश में कोई धर्म नहीं है। वह जो अपने उद्देश्य को आत्म महिमा देता है, वह अपने आप को उस अनुग्रह का निराश्रित पाएगा जो अकेले ही उसे मसीह की सेवा में कुशल बना सकता है। जब भी अभिमान और आत्मशालीनता भोगी होती है तो काम में कमी आती है। यह उस समय की लंबाई नहीं है जब हम शम करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा काम में निष्ठा है जो इसे ईश्वर को स्वीकार करती है। हमारी सभी सेवा में एक पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग की जाती है। सबसे छोटा कर्तव्य है ईमानदारी और आत्मविस्मशत, आत्मकामना के साथ छोटा काम ईश्वर की माता, बजाय इसके कि स्वयं की खोज में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। वह यह देखना चाहता है कि हम मसीह की आत्मा की कितनी कद्र करते हैं और मसीह की कितनी समानता हमारे कार्य को प्रकट करती है। वह प्यार और विश्वास से अधिक संबंध रखता है, जिसके साथ हम जितना करते हैं उससे अधिक संबंध रखता है, जिसके साथ हम जितना करते हैं उससे अधिक काम करते हैं। स्वार्थ जब मर चुका होता है, जब वर्चस्व के लिए संघर्ष समाप्त हो जाता है, जब कृतज्ञता हृदय को भर देती है, जब प्रेम जीवन को सुगठित कर देता है, यह केवल तभी है जब मसीह आत्मा में निवास कर रहा है और हम ईश्वर के साथ मजदूरों के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि अपने श्रम की कोशिश करते हुए सच्चे श्रमिक इसे आलसीपन नहीं माने, वे खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह सब हर्षित काम है जो दिल से किया जाता है। परमेश्वर में खुशी यीशु मसीह के माध्यम से व्यक्त की जानी जाती है। उनका आनंद मसीह से पहले निर्त किया गया आनंद है। उसकी इच्छा को करने के लिए जिसने मुझे भेजा है, काम पूरा करने के लिए, यूहन्ना 4:34। वे महिमा के ईश्वर के साथ सहयोग में हैं। यह विचार सभी को मीठा करता है, यह इच्छा को पूरा करता है। यह कुछ भी हो सकता है उसके लिए आत्मा को परेशान करता है। निस्वार्थ भाव से काम करते हुए मसीह के कष्टों का सहभागी होने के कारण, उनकी सहानुभूति को साझा करते हुए और उनके परिश्रम में उनके साथ काम करते हुए, वे उनके आनंद के ज्वार को निगलने में मदद करते हैं और उनके श्रेष्ठ काम का सम्मान और प्रशंसा करते हैं। यह ईश्वर के लिए सभी सच्चे सेवा भाव की भावना है। इस भावना की कमी के माध्यम से जो भी प्रथम प्रतीत होता है वह अंतिम हो जाएगा, जबकि जो इसके पास होगा वो अंतिम हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने खुद को मसीह के लिए दे दिया है, फिर भी जो अपनी सेवा में कोई बड़ा काम करने या महान बलिदान देने का कोई अवसर नहीं देखते हैं। ये इस विचार में मिल सकते हैं कि वह जरूरी नहीं कि शहीद की आत्मसमर्पण ही ईश्वर के लिए सबसे स्वीकार्य हो। यह मिशनरी नहीं हो सकता है जिसने दैनिक खतरे का सामना किया है और मृत्यु स्वर्ग के रिकॉर्ड में सबसे अधिक है। मसीही जो अपने निजी जीवन में ऐसा है, दैनिक आत्मसमर्पण में, उद्देश्य की ईमानदारी में और विचार की शुद्धता में, उत्तेजना के तहत नम्रता में, विश्वास और पवित्रता में, निष्ठा में, जो काम से कम घर में एक जीवन मसीह के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वर की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध मिशनरी या शहीद से भी अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। ओह, कितने अलग अलग मानक हैं जिनके द्वारा ईश्वर और पुरुष को चरित्र को मापते हैं। ईश्वर ऐसे कई प्रलोभनों को देखता है जिनके खिलाफ दुनिया और यहां तक कि दोस्तों के दिल में, घर में होने वाले प्रलोभनों का कभी पता नहीं चलता है। वह अपनी कमजोरी को देखते हुए आत्मा की विनम्रता को देखता है। एक विचार है, बुराई पर ईमानदारी से पश्चाताप। वह उनकी सेवा के लिए पूरी निष्ठा से देखता है। उन्होंने आत्म लड़ाई के साथ कठिन लड़ाई के घंटों का उल्लेख किया है जिसने जीत हासिल की। यह सब ईश्वर और स्वर्गदूत जानते हैं। उनके लिए स्मरण पुस्तक उनके सामने लिखी गई है, जो कि प्रभु में डरते हैं और उनके नाम के विषय में सोचते हैं। न हमारी सीख में, न हमारे स्थिति में, न हमारी संख्या में या सौंप गई प्रतिभाओं में, न कि मनुष्य की इच्छा में, सफलता का रहस्य ढूंढन में है। अपनी अक्षमता को महसूस करते हुए हम मसीह का चिंतन कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो पूरी ताकत है सभी विचार के बारे में सोचा है, इच्छुक और आज्ञाकारी जीत के बाद हासिल करेंगे। और फिर भी हमारी सेवा में भी या हमारे काम को विनम्र करना, अगर साधारण विश्वास में हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम इनाम से निराश नहीं होंगे। जो सबसे बड़ा और बुद्धिमान भी नहीं कमा सकता है, वो सबसे कमजोर और सबसे विनम्र हो सकता है। स्वर्ग का सुनहरा द्वार आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खुलता है, ये आत्मा में गर्व करने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन चिरस्थायी दरवाजे छोटे बच्चे के कपकपनों वाले स्पर्श के लिए व्यापक होंगे। धन्य है उन लोगों पर अनुग्रह की पुनरावृत्ति जो विश्वास और प्रेम की सादगी में ईश्वर के लिए गढ़े हैं।